بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ناظرین، آج 15 شعبان حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یوم ولادت باسعادت ہے، اس مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عراق میں دہشت گردی اور اس کے محرکات، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ حضرت، جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، کربلا معلہ میں عراق کے سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ایک گروہ کا پتہ لگا کے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا اور دہشت گردی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ یہ دہشت گرد آج کربلا معلہ میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت میں شرکت کے لیے پورے عراق سے آنے والے 10 لاکھ کے اجتماع میں کار بموں کے دھماکے کرنا چاہتے تھے۔ عراق کے سیکورٹی اہلکاروں نے اسی کے ساتھ متعدد کار بموں کا پتہ لگا کے انہیں ناکارہ بنا دیا۔ جبکہ عراق میں گزشتہ 2 دن میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں مجموعی طور پر تقریباً 50 افراد جاں بحق اور 200 کے قریب زخمی ہوئے۔ منگل کو کربلا معلہ میں بھی کار بموں کے 3 دھماکے ہوئے، اسی طرح عراق کے دیگر علاقوں میں بھی کار بموں کے متعدد دھماکے کیے گئے۔ منگل اور بدھ کو یہ دہشت گردانہ حملے ایسے عالم میں انجام پائے کہ عراق کے مختلف شہروں اور علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے جشن میں شرکت کے لیے پیدل کربلا معلہ جا رہے تھے۔ دہشت گردی کی ان کاروائیوں میں عام شہری مارے گئے۔ خود عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکہ اور اس کی اتحادی علاقائی حکومتیں کافی عرصے سے دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کر رہی ہیں اور وہ عراق میں بدمنی اور فرقہ واریت پھیلانا چاہتی ہیں۔ عراق کے تعلق سے قابل غور بات یہ ہے کہ دہشت گردانہ کاروائیوں کے میں ملوث ہونے کے الزام میں مطلوب نائب صدر طارق الہاشمی کے فرار کے بعد دہشت گردانہ کاروائیوں میں شدت آ گئی ہے۔ طارق ہاشمی جب سے عراق سے بھاگے ہیں، وہ کبھی ترکی میں مہمان ہوتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں دیکھے جاتے ہیں، اور کبھی قطر کی حکومت ان کی پذیرائی کرتی نظر آتی ہے، اور علاقے کی یہی 3 حکومتیں ہیں جو شام میں بھی مسلح دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتی ہیں۔ گزشتہ دنوں عراق میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ ان کا ہدف اور ان کا مقصد شاید یہ رہا ہو کہ عراقیوں کو جو پیدل کاروانوں کی شکل میں کربلا معلہ جا رہے تھے تاکہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے یوم ولادت کے جشن میں شرکت کریں، انہیں روک دیں۔ لیکن رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ کربلا معلہ میں لاکھوں عراقی پیدل چل کے پہنچ چکے ہیں اور اس وقت کئی ملین عراقیوں کا وہاں پر اجتماع ہے، اسی کے ساتھ غیر ملکی زائرین بھی کربلا معلہ میں موجود ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں صدر نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان حنان علی عباس صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ حنان علی عباس صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی۔
حنان صاحب، گزشتہ دنوں عراق میں ایک بار پھر دہشت گرد سرگرم ہوئے اور 2 دن کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی مختلف کاروائیوں میں 50 سے زائد بے گناہ عراقی شہریوں کو شہید اور 200 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا۔ عراق میں ان دہشت گردوں کا ہدف کیا ہے؟
جی، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو عراق کے اندر تباہ کاریاں ہیں، اس کا اگر ماضی کا تجزیہ کیا جائے تو عالمی بالادست طاقت جو امریکہ ہے اس نے جب وار اگینسٹ ٹیرر کے بعد جو ویپن آف ماس جو ڈسٹرکشن کے نام پہ اور تباہی پھیلانے والے جو ہتھیاروں کے نام پہ عراق کے اوپر قبضے کا یا غلبے کا ایک خواب دیکھا تو اس کے بعد سے تباہ کاریوں کا یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا ہے. اگر ہم 2003 کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس میں 12,087 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے, اور اسی طرح 2004 میں 11,000, 2005 میں 15,000, 2008 میں 28,000, 2007 میں 25,000, 2008 میں 9,000 اور 2009 میں 4,000 اور اسی طرح پہ 2010 میں 4,000 اور بالترتیب 2011 کے اعداد و شمار دیکھیں تو ابھی تک جو ہے وہ 4,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ موت کو گلے لگا چکے ہیں. یہ عالمی بالادست طاقت امریکہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ عراق کے اندر جو تیل پہ قبضے کا ایک منصوبہ ہے اس کا اس کو جو ہے وہ حتمی شکل دینا چاہ رہی ہے. اور تیسری سمت جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ عراق کے اندر خود سے جو ایتھنک گروہ جو ہیں وہ آپس میں ان کے کچھ گریونسز ہیں اور کچھ ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے عالمی سطح پہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مسلم امہ کے اندر ایک یونٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے تھا اس کو خال خال جو ہے پذیرائی مل رہی ہے, اور بہت کم اسلامی دنیا کے لیڈرز جو ہے اس بات کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ امہ جو ہے وہ اس وقت تیل کے ہتھیار کے ذریعے دنیا کے حکومتی فیصلہ سازی کے عمل پہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس کی مثال میں احمدی نجات صاحب کو دینا چاہوں گا کہ وہ دنیا میں جو مسلم امہ کی قیادت ہے اس میں ایک خود انحصار اور خود دار اور خود مختار ایک لیڈر کے روپ میں سامنے آئے ہیں, اور ان کا جو ایک ویژن ہے مسلم امہ کی یونٹی کا, میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت جو ہے وہ پکار رہا ہے مسلم امہ کے لیڈرز کو, آواز لگا رہا ہے کہ وہ یونٹی کے ساتھ ان مسائل کا تجزیہ کریں کہ جو مسلم امہ کو درپیش ہیں, اور ان ساری سچویشن جو آج ہمیں درپیش ہے عراق کے اندر, آج ہمیں جو کشمیر میں جن مسائل کا سامنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں اسلامی دنیا کے کئی ممالک میں جو نہتے لوگوں کو جو ہے وہ موت کی تاریکیوں میں دھکیلا جا رہا ہے, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو عالمی بالادست طاقتیں ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں, اور وہ اپنی بالادستی کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے موت کی وادی میں انسانوں کو دھکیل رہے ہیں, اور اس پہ ازحد ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی جو ضمیر ہے وہ اور انسانی حقوق کے رہنما اور مسلم دنیا کے لیڈرز اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان کو ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کرنا چاہیے.
جی حنان صاحب, عراق میں دو تین مواقع ایسے ہوتے ہیں جب دسیوں لاکھ عراقی پیدل سینکڑوں کلومیٹر کا راستہ طے کر کے کربلا معلہ پہنچتے ہیں, ایک عاشور, دوسرا موقع چہلم کا ہوتا ہے, اور تیسرا موقع یوم ولادت حضرت امام مہدی کا ہے, اور اس موقع پر بھی دہشت گرد سرگرم ہو جاتے ہیں. یعنی یہ تینوں مواقع ایسے ہیں کہ جب عراقی یا سوگ منانے کے لیے یا جشن میں شرکت کے لیے کربلا معلہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور راستے میں ان پر حملے کیے جاتے ہیں, بم کے دھماکے کیے جاتے ہیں. ان حملوں کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ عالمی طاقتوں کا ایک خواب ہے دنیا میں, چونکہ عراق کے پاس کچھ ایسے ریسورسز ہیں, کچھ ایسے نیچرل ریسورسز ہیں جو دنیا کے لیے اور خاص طور پہ جو انفلوئنشل ممالک ہیں ان کے لیے وہ خاصی اہمیت کے عامل ہیں, اور اسی لیے وہ عراق کے اندر حکومتی منظر نامے کے اندر اپنے من پسند لوگوں کو ان کو غلبہ دلانے کے حوالے سے اور ان کو جو ہے ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں شامل کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی فیصلہ سازی کے عمل میں چیزیں فیصلے کرتے رہتے ہیں. تو اس میں جو سب سے زیادہ محرک میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں اور جو میری نظر میں جو میرے عقل میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ عراق کے اندر ان کے مفادات ہیں, ان کے فائنینشیل بینیفٹس ہیں, اور وہ تیل کے ذریعے جو ہے وہ ایک ہتھیار تیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے عراق کے اندر اپنے غلبے کو اپنے قبضے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جو سب سے بڑا محرک جو ہے وہ غیر ملکی مداخلت ہے, اور غیر ملکی مداخلت کو اگر تمام لوگ یونٹی کے ساتھ جو فیصلہ ساز ہیں اور تمام جو گروہ ہیں خاص طور پہ وہاں پہ جو سنی, جو شیعہ, جو کرد, جو ایتھنک مائنورٹیز یا میجورٹیز ہیں, وہ اگر یونٹی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ایک کوئی تیسری قوت جو ہے ان کے انتشار کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان کی جو باہمی چپکلش ہے اس کے ثمرات جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی صورت میں اور باہمی انتشار اور ہر طرف افراتفری اور دھماکوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تمام جو مذہبی گروہ ہیں ان کو یونٹی کے ساتھ جو ہے ایک لامل بنانا چاہیے، اور وہ خواب جسے سب نے مل کے دیکھا تھا آج اپنے اپنے قبیلوں میں کیوں بٹ کے دیکھتے ہیں، ان کو ایک مشترکہ لامل اپنانا چاہیے، اور جس دن جو ہے تمام مذہبی گروہ یکجہتی کے ساتھ ایک نیشنل ڈیفنس کا اور انٹیریئر افیئرس کا ایک متفقہ لامل طے کریں گے دنیا کے اسلامی ممالک میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ قیادت کی سطح پہ بھی اور معاشرتی سطح پہ بھی جو دہشت گردی ہے اور جو پیس کے دیگر مسائل ہیں انہیں ہمیں کم کرنے میں، انہیں جو ہے ایک نئی شکل دینے میں مدد ملے گی۔
جی بہت بہت شکریہ، اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب موجود ہیں۔ مصباحی صاحب السلام علیکم۔ مصباحی صاحب، عراق میں جو دہشت گردانہ کاروائیاں آئے دن ہوتی ہیں خاص طور پر،
وعلیکم السلام،
جی خاص طور پر عراق میں جب کوئی مذہبی موقع ہوتا ہے اجتماع کا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، تو دہشت گرد زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ان دہشت گردانہ حملوں کے محرکات کیا ہیں اور دہشت گردوں کے اہداف کیا ہیں؟
دہشت گردوں کے جو پس منظر کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری نظر میں جو بڑے کئی اسباب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے مشرق وسطی کی جو اس وقت صورتحال ہے، خواہ وہ شام کی صورتحال ہو یا یہ کہ لبنان کی صورتحال ہو یا فلسطین کی ہو یا جو بھی ہو، جہاں بھی مشرق وسطی میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب ہم عراق کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر تین بڑے اسباب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ نوری المالکی کی جو حکومت ہے، اس حکومت نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ عراق کی سرزمین پر انہوں نے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی پچھلے 13 جون سے لے کر 2 دن پہلے تک تقریباً 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور دہشت گردانہ کاروائیوں میں تقریباً سینکڑوں افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ان لوگوں کا، دہشت گردوں کا اور القاعدہ کا مقصد یہ ہے کہ نوری المالکی کی حکومت کو زیادہ سے زیادہ سبوتاز کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کی حکومت کو کمزور کیا جائے تاکہ یہ امریکہ یا یہ کہ اس کے حلیف ممالک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکیں کہ جب تک امریکہ کی فوج وہاں تھی اس وقت تک تو وہاں پر صورتحال بہتر تھی، اور اب جبکہ وہاں پہ امریکہ کی فوج نہیں رہی ہے تو نوری المالکی حکومت نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ نوری المالکی کو بدنام کرنا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ بہت ہی محرک ثابت ہو مجھے لگتا ہے کہ ان دہشت گردوں کے جو اہداف ہیں، یا یہ کہ امریکہ یا یوروپ یا یہ کہ جو اسلام کے خلاف عناصر ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی دہشت گردانہ حرکتیں کر کے وہ چاہتے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ مذہبی تقریبات کے موقع پر، خواہ وہ غم کا موقع ہو یا جشن کا موقع ہو، اس موقع پر خاص طور پہ اس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ شیعہ اور سنی حضرات آپس میں ٹکرا جائیں، اور ان کا جو اصل مقصد ہے، خاص طور پہ امریکہ شروع سے یہ چاہ رہا ہے کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ شیعہ کمیونٹی کو دے دیا جائے، دوسرا حصہ سنیوں کو دے دیا جائے، تیسرا حصہ کرد کو دے دیا جائے۔ یعنی عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو سازش امریکہ نے پہلے تیار کی تھی ابھی بھی وہ اس سازش پہ عمل پیرا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا محرک میری نگاہوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ طارق الہاشمی کے خلاف جب سے مقدمہ چلانے کی بات سامنے آئی ہے، اس وقت سے لے کر اب بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ دہشت گردانہ کارروائی بڑھتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ملک کو چھوڑا اور اب کبھی سعودی عرب میں دیکھے جاتے ہیں، قطر کی سرزمین پہ دیکھے جاتے ہیں، ترکی میں دیکھے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک پوری طرح پہ وہاں پہ مضبوط ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی किसी तरह तारिक अल हाशमी के खिलाफ मुकदमा ना चले और इराक में अमन व अमान की सूरत ना बनने पाए। और एक और बात मैं इस वक्त तस्करा करना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों की बात है कि जब शाम की सरजमीन पर वहां पे शाम के खिलाफ जो महाजाराई चल रही है, तो अमेरिका ने इराक से ये कहा था कि आप ये शाम के खिलाफ जो महाजाराई चल रही है उसमें आप साथ दीजिए, लेकिन नूरी अल मालकी ने साफ लफ्जों में ये मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि वो ताकत जो ये चाहती है कि वो दुनिया का कोई भी मुल्क, खासतौर पर मशरिक वस्ता के मुस्लिम ममालिक ये हमारी हुक्म उदुली ना करें, उस ताकत को ये बात कैसे पसंद आ सकती थी। यही वजह है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इराक की सरजमीन पर अमन कायम ना रहे और इराक तरक्की ना करे। इसके लिए जरूरी है कि मैं इस सिलसिले में एक बात और बताना चाहूंगा कि इराक की सरजमीन पर अब तक जितने भी दहशतगर्दाना वारदात हुई हैं, दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, तो मैं वहां के आवाम की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कभी भी इसे शिया सुन्नी या ये के कबायली इसमें देखने की कोशिश नहीं की और अपने आपस में इन्होंने टकराव पैदा करने की कोशिश नहीं की। मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा। और एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको देखने की जरूरत है, वो ये कि जब तक इराक की सरजमीन पर तमाम लोग, वो शिया हो, सुन्नी हो, कुर्द हो, कबायली हो, मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में, वो तमाम लोग अगर मुत्तफिक होकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं और अलकायदा और इस तरह की दहशतगर्दाना तंजीमों को अगर कंडेम नहीं करते हैं, उनके अहदाफ को टॉर्चर उनके अहदाफ में नाकाम नहीं बनाते हैं, तो उस वक्त तक इराक तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं इराकी आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अमन को कायम रखें और किसी भी तरह से फिरकों में, मसलक में, ग्रोह में तकसीम होने की कोशिश ना करें।
बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई साहब। और हमारा राबता टेलीफोन पर बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार आगा मसूद सैन साहब से। आगा मसूद सैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। मसूद सैन साहब, इराक में जो दहशतगर्दाना हमले हैं, दहशतगर्दी आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। अभी मिस भाई साहब बजा तौर पर ये कह रहे थे कि ईरानी अवाम, इराक के अवाम काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने कभी भी इन दहशतगर्दाना हमलों को मुल्क में फिरका वारियत फैलने में मददगार ना बनने दिया कि इसके नतीजे में फिरकावाराना तसादुम हो जाए। लेकिन एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि अब तक जब से वहाँ पर दहशतगर्दाना हमले शुरू हुए हैं अमेरिका के कब्जे के बाद, अब तक ये जितने भी धमाके हुए हैं, जितने भी बड़े हमले हुए हैं, या तो शिया आबादी में हुए हैं या शियों के इज्तिमा में हुए हैं, यानी शिया मुसलमानों को इन हमलों में निशाना बनाया गया है। अगरचे पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि ये हमला करने वाले यकीनन सुन्नी नहीं हैं और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इराक में जितने भी दहशतगर्दाना हमले होते हैं, जितने भी बड़े धमाके होते हैं, वो या शिया आबादी में होते हैं या फिर शियों के इज्तिमा को निशाना बनाया जाता है, ऐसा क्यों है?
देखिए, मैं याद करूँ कि दिल्ली से हमारे भाई जो गुफ्तगू कर रहे थे उनकी गुफ्तगू में बड़ा तजाद था। बात दरअसल ये है कि इंसान को सच बात करनी चाहिए। आज तो मीडिया इतना आजाद है, अगर चलिए बाज तरक्की पजीर ममालिक का मीडिया इतना आजाद नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो आजाद है। इस तरह प्रिंस नाइफ, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनके बारे में सारे अखबार में, बैन अवी अखबार में खबर लिखी है कि वो फायदा यह है कि वो फंडिंग करते थे ऐसे लोगों की जो इराक के अंदर और खसूस के साथ सुन्नियों की, ताकि ये है कि वो बावत करें, वो दहशतगर्दी करें, वो बाकायदा बम ब्लास्ट करें। तो आपका ये कहना तो बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जितने भी बातें हुई हैं वो शिया जल्सों में हुई है या करबला मोहल्ला के जाते हुए जो जायरीन थे उन पर हुई है या उन जायरीन पर जो बसों के जरिए जा रहे हैं या कारों के जरिए जा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ख्याल सही है। ये तो इंटरनेशनल अखबार में प्रिंस नाइफ के बारे में आया कि हाल ही में इनका इंतकाल हुआ, और अभी फिर एक और खबर आई है कि प्रिंस सलमान भी उसी उसूल पे काम कर रहे हैं। यानी यह है कि एक तो ईरान के इन्फ्लुएंस को इस मशरक वस्ता में, खसूस शाम में और इराक में ईरान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस वो रोका जाए, लेकिन इन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इराक की आबादी जो है वो तकरीबन 74% जो है वो एहले शिया हज़रात है। फिर इसके बाद ये कि मुश्किल से 15% जो है वो सुन्नी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी हरकतें अमेरिका के इशारे पर जो सऊदी अरब करवा रहे हैं वो उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो ना होने पाए, वहाँ पे अमन कायम ना होने पाए, वहाँ पे जमहूरी अखबार परवरिश ना होने पाए, और वहाँ पे जो है जो जो इम्कान है इंसानी वसाइल के और वो इम्कान जो 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 कि फिजिकल जैसे रिसोर्सेज कहते हैं वो तरक्की ना कर पाए, ये सारी बातें जो है अब खुलकर सामने आ गई हैं। और मैं आपकी खिदमत करूँ कि अभी मेरे सामने डेली टाइम्स रखा हुआ है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अखबार है पाकिस्तान का, अंग्रेजी में निकलता है। इसमें हजारा कम्युनिटी पर जो जुल्म हुआ है जिस तरीके से 2011-2012 में हजारा कम्युनिटी अहले तशी से ताल्लुक है और इन्हीं की कम्युनिटी के जनरल मूसा पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिस तरह इनको मारा जा रहा, आज अखबार में लिखा है कि इसमें सऊदी हाथ शामिल है और वो वहाँ के जुनुंदला ग्रुप को और वहाँ के जंगी ग्रुप को बाकायदा ये फंडिंग करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो इराक में हो रहा है, ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन अखबार में और अखबार के मैं नाम भी ले रहा हूँ आपके सामने ताकि उसका रिकॉर्ड पर है, तो ये सूरत हाल इसकी जिम्मेदारी किस पे है? फिर ये अपील करना कि वो मुतहद हो जाए, कैसे मुतहद हो जाएंगे, एक तरफ से फंडिंग हो रही है, फिर ईरान से दुश्मनी निकालने के लिए हजारों तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं और इसराइल से दोस्ती कर ली। आप मुझे बताइए क्या इसराइल मुसलमानों का भाई ख्वाह है? क्या इसराइल जो है वो इस्लाम के लिए उसमें कोई दिल में नरम गोशा है? मुझे तो नहीं मालूम, मैं 30 साल से साफ़त कर रहा हूँ कि इसराइल का पूरा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जुल्म तशद्दुद और ताकत के जरिए अपनी फौज कशी के जरिए जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ डील कर रहा है, उसको जहां जहां मौका मिलता है पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है उनको कौन मदद कर रहा है, कौन से लोग हैं? तो ये चीजें जो मैं आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ और सुनने वालों की खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि भाई कैसे इराक में अमन कायम होगा जबकि बाकायदा फंडिंग हो रही है, बड़ी ताकत फंडिंग कर रही है, सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है, कतर फंडिंग कर रहा है, तो ये क्या चीज है? क्या किसी से किसी अखबार नबी से जो 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 के हालात को समझता है क्या उससे ये बातें छुपी हुई है? मैं नहीं समझता कि कोई बातें छुपी हुई है। और इराक एक लिटमस टेस्ट है, और मैं ये बता दूं आपसे कि ये जो प्रिंस सलमान जो है जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं और क्राउन प्रिंस बने हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपनी पॉलिसी बिल्कुल बदलनी पड़ेगी क्योंकि इससे अब लोगों की उंगलियां जो है सऊदी अरब पे उठती है। पहले लोग खुल के बात नहीं करते थे, अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उनसे बाकायदा उनके खिलाफ बात कर रहा है और लिख रहा है। जब पाकिस्तान का मीडिया जो सऊदी अरब के साथ जिसके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं वो जब लिख रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिचुएशन कहाँ तक जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में नूरुल मालकी की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है और उनको स्टैंड लेना चाहिए, इराक के आवाम को स्टैंड लेना चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है और कौन फंडिंग करा रहा है। आप यकीन करें मुसलमानों का दुश्मन खुद ये मुसलमान है, 22 जो है मेंबर है सऊदी अरब लीग के और 22 के 22 जो है वो ईरान को छोड़ के सब अमरीका के हमलावर हैं। तो आप मुझे बताइए कि सूरत हाल में हम कहाँ खड़े हुए हैं? लेकिन मैं यकीन कीजिए मैं नूरुल मालकी की तारीफ करता हूँ कि वो जिस तरीके से एक टाइट रोप वॉकिंग पर जिस जो वो काम कर रहे हैं उससे मैं समझता हूँ कि सूरत हाल जो है वो संभलेगी। और आज भी अभी 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ, इससे पहले 2 हफ्ते पहले 70 जो है वो जायरीन मारे गए। ये सारी चीजें जो है ना ये उन्हें नायक जो है रंग लाएगा और सऊदी अरब को सोचना चाहिए कि वो इस तरीके से जो है ईरान की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को या ईरान की बढ़ती हुई ताकत को वो इस तरह नहीं रोक सकता, ना अमरीका रोक सकता है, और ये सूरत हाल बहुत जल्द जो है ना लोगों के सामने आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया हनान साहब। जनाब अमेरिका के इराक में खास अहदाफ हैं, उसके खास मकासद हैं, उनके लिए वो दहशतगर्दी फैलाता है और ये काम अपने साम्राज्य अहदाफ के लिए दुनिया के कई मुल्कों में अमेरिका अंजाम देता है। लेकिन सवाल यह है कि इलाके की बाज़ हुकूमतें जो इराक में दहशतगर्दी फैलाने में और इस मुल्क को कमज़ोर करने में मसरूफ़ हैं, उनका क्या हदफ है?
मैं समझता हूँ कि मसूद आगा साहब बड़े सीनियर तज्जिया निगार हैं और उन्होंने बड़ा खूबी से तज्जिया किया है कि घर को आग लगी है घर के चिराग से। जो मुसलमानों के इंतशार का सबब है और या जो मुसलमानों की एक तबाही का एक जिम्मा है वो किसी हद तक हमारे हुक्मरानों जो हैं हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हम भी कभी कभी जो है ऐसे इस्तेमारी एजेंडा पे काम करना शुरू कर देते हैं जो हमारी खुद जो मुल्की मफाद में नहीं होता और वो वेस्टर्न इंटरेस्ट या अमेरिकन इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और ख़ास तौर पे इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती रही बरसों पाकिस्तान में भी कि अमेरिका के ख़िलाफ़ या ये नेटो सप्लाई के ख़िलाफ़ या डिफरेंट जो रेमडेसिविर केस माजी में सामने आया था उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक को मुनज़्ज़म किया जाए और एक शिद्दत से तहरीक जो है वो एक चौकों से ऐवानों तक उसे ले जाया जाए, बट वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाया। जो इराक़ के अंदर जो जब एक गैर एलानिया हमला जब 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने किया तो उस वक्त भी वो रिएक्शन पाकिस्तान की साइड से या इस्लामी ब्लॉक की साइड से नहीं सामने आ सका था जिसकी ज़रूरत जो है महसूस की जा रही थी। और ख़ास तौर पे उसके बाद अमेरिका जो इंसाफ पे मबनी हुकूमत नहीं कर रहा और वो दुनिया में अपना एजेंडा दुनिया के ऊपर मुसल्लत करना चाह रहा है और ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से उसकी जो तंग नजराना पॉलिसीज़ हैं वो जो है उनको अप्लाई करने के लिए मुस्लिम दुनिया के कुछ मीर जाफरों और मीर सादकों और मुख्तलिफ हवालों से जो कुछ मुनाफिकीन हैं उनका सहारा ले रहा है। और पाकिस्तान में भी कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श सूरताल नहीं है हुकूमती एवानों की के लेवल पे। और ये आज की नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में गालिब अक्सरियत में है, जो 63% है पॉपुलेशन का, जो एक वाज़े अक्सरियती आबादी का हिस्सा है, वो समझती है कि हुक्मरानों को, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को अपनी कौमी ज़रूरियात और ज़मीर की रोशनी में अपनी खारजा पॉलिसी और दाखला पॉलिसी को मुरतब करना चाहिए और उस पर बैरूनी दुनिया की ज़रूरियात के खारजा पॉलिसी और दाखला पॉलिसी पर पैबंद ना हों तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और मुस्तकबिल जो है पुकार रहा है इस बात के लिए कि एक आज़ादाना जो है पॉलिसीज इख्तियार की जाएँ और उसमें जो वस्त का अमल दखल है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस है उसकी झलक नुमाया नहीं होनी चाहिए। और जो इराक़ के अंदर तबाहकारियाँ हैं और पीस के हवाले से जिस इतिहाद की ज़रूरत महसूस की जाती रही, अगर मुस्लिम दुनिया जो है वो अपनी सफ़ों में इतिहाद बरकरार रखे तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं कि जो है वो वहाँ पर पीस भी कायम होगा और साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो दुनिया में उरूज की और दुनिया की इमामत की जमानत बनेंगे। और ये चीज़ इसको कतन मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम दुनिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनके अंदर इम्कानात हैं, उनके अंदर तरक्की के वाज़े इम्कानात हैं। मुस्लिम दुनिया के अंदर जब माजी में भी ज़रूरियात महसूस की जाती रही, जेड भुट्टो ने इस्लामिक यूनिटी के लिए जिन इकदाम को एक नई जिला बख्शी उसके भी आज अगर आप वो करेक्टर्स देखें तो उन सबको तारीख के बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। और साथ ही साथ ये जो आज जिस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो एक यकजहती के साथ जो है एक अपना अपनी लीडरशिप का एक तसव्वुर जो है वो दुनिया के सामने रखे और अपने रिसोर्सेज के ज़रिए जो है दुनिया में इस्लाम के हकीकी पैगाम के मुताबिक मसावात पे मबनी मुआशरे के क़याम की समझ जो है वो एक नया बाब रकम करे तो उस हवाले से ज़रूरत महसूस की जा रही है। मैं सेकंड करूंगा मसूद आगा साहब को कि हमें जो है ख़ुद हामी इंतशार को ख़त्म करना होगा और इस्लामी दुनिया के लीडर्स को अपनी पॉलिसीज के अंदर तब्दीली लाना होगी और उनको खुद गर्जाना पॉलिसीज जो है तर्क करना होगी और एक नए ऐद का ख्वाब देखना होगा जिसमें मसावात के दरियाब हैं और जिसमें तरक्की और खुशहाली के हर सू नए दरवाजे खुल सकें।
शुक्रिया जनाब हन्नान साहब। मिसबाई साहब, जनाब इराक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती में सबसे आगे सऊदी अरब है। सऊदी अरब के बहुत से लोग वहां पकड़े गए हैं। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने एतराफी बयान में बताया है कि उनको माली इमदाद सऊदी हुकूमत से मिलती है। इसी के साथ उर्दुन और कतर भी इराक में दहशतगर्दों की मदद करते हैं। हाल ही में तुर्की भी उन मुल्कों में और में शामिल हो गया है जो इराक में दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, और यही वो हुकूमतें हैं जो शाम में दहशतगर्दों की हिमायत करती हैं। इलाके को तबाह करने में ये तीन ममालिक खित्ते के खास तौर पर मुमकिन है और भी हो, ये आगे आगे हैं। ये साम्राज्य एजेंडे पर, अमरीकी एजेंडे पर और सहूनी एजेंडे पर काम ये तीन ममालिक क्यों कर रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आगा मसूद साहब की बातों पे मैं एतराज़ यूँ करना चाहूँगा कि शायद वो मेरी गुफ्तगू नहीं सुन सके कि इराक की सरजमीन पर अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक यानी कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की वगैरह ये सब मिलकर के इराक की सरजमीन पे ये सब करा रहे हैं और ये जो सूरत हाल बनी हुई है तो वो शायद मेरी आवाज़ सही से न सुन सके। मैं सिर्फ इस बात की तारीफ कर रहा था कि इराक की सरजमीन पे जो इराकी आवाम है वो आवाम मुत्तहिद है और वो इसके इसका रिएक्शन नहीं कर रही है जैसा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है कि एक बार किसी सुन्नी के जलसे में बम धमाका होता है तो दूसरी बार किसी शिया मजलिस में बम धमाका होता है। तो अगर आगा मसूद साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसी सूरत हाल इराक में हो जाए तो मैं इसे कंडेम करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है ये जो अमरीका के इत्तेहादी ममालिक हैं सऊदी अरब कतर ये वो, तो ये कभी भी अमेरिका के चंगुल से आजाद इसलिए नहीं हो सकते कि इनके अपने मफादात उनसे वाबस्ता है। इनकी जो शहनशाहियत है, इनकी जो तानाशाहियत है, ये अमेरिका की वजह से ही चल रही है और उसी वक्त तक ये तानाशाह और शहनशाह बने रहेंगे जब तक के अमेरिका की हिमायत करते रहेंगे और अमेरिका के मफादात का तहफ्फुज मशरिक़ वुस्ता में करते रहेंगे। आपको याद होगा कि जब नूरी अल मालकी वजीर आजम बन रहे थे तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने एतराज किया था। अब आप जरा तस्वुर करें कि नूरी अल मालकी के वजीर आजम बनने पे सऊदी अरब एतराज करता है, कतर एतराज करता है और कतर ये पेशकश करता है या सऊदी अरब ये पेशकश करता है कि हम शाम में वहां के महाजी ग्रुप जो शाम के खिलाफ लड़ रहे हैं हम उसको उनको ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका उनकी हिमायत करता रहे और ये अपनी तानाशाहियत को आगे बढ़ाते रहे और इनकी हुकूमत बाकी रहे। बाकी ये कि मैं इस बात को हमेशा हमेशा जैसा कि हन्नान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और मैं समझता हूँ कि आज का जो नौजवान तबका है खासतौर पर मुसलमानों का नौजवान तबका वो इस तौर पर सोच रहा है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो, वो मसलक की बुनियाद पर या ये कि गुरोह की बुनियाद पर मुनकसिब ना हो। कि अगर वो किसी आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी दहशतगर्द का कोई मसलक नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता और वो अगर कोई ये कहे कि भाई कोई वहां पे फला जगह शिया ने कर दिया, फला जगह पे सुन्नी ने कर दिया, कहां पे उनका कोई मसलक नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उन ताकतों की हिमायत, उन ताकतों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं जो ताकतें इस्लाम को और मुसलमानों को तबाहबाद बर्बाद करना चाहती हैं। इसलिए मैं हन्नान साहब की बातों की तारीफ करना चाहूंगा और मैं उनकी बातों से मुत्तहिद हूं कि वो उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हों और मुत्तहिद उसी वक्त होंगे जब इस तरह की चीजों पे रिएक्शन अगर इस्लामाबाद की तरह, कराची की तरह, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह अगर इराकी सरजमीन पर भी रिएक्शन होने लगे तो यही तो उन लोगों का असल मकसद है दहशतगर्दों का और सऊदी अरब अमरीका और उनके हलीफ ममालिक का कि वो लोग मुंतशिर हों और वो अपने मफादात वहां पर हासिल करते रहें। तो मैं इसकी कभी तायद नहीं कर सकता। और जो आपने सवाल किया है वो ये कि अमरीका और उसके अमेरिका और यूरोपीय ममालिक चूंकि इन तानाशाहों को मदद करते हैं और इन तानाशाहों की हुकूमत बरकरार रखने में हिमायत करते हैं इसलिए वो उनके मफादात का तहफ्फुज वहां कर रहे हैं, चाहे उनके लिए इसके लिए वो मुसलमानों की जान लें, दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए फंडिंग करें, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब। मिसबाई साहब ने बजा तौर पर फरमाया है कि चूंकि ये जो आमिर हुकूमतें हैं आगा मसूद साइन साहब से राबिता मुनकता हो गया है। जी हन्नान साहब, मिसबाई साहब ने बजा तौर पर फरमाया है कि जो आमिर हुकूमतें हैं चाहे वो सऊदी अरब की हुकूमत हो या कतर की हुकूमत हो या उर्दून की या इलाके की दीगर जो शाही और हुकूमतें हैं, चूंकि उनकी बका का इन्हिसार अमरीका की मदद पर है, अमेरिका की नज़र करम पर है, जब तक अमेरिका चाहेगा वो बादशाह रहेंगे, जब वो अमेरिका नहीं चाहेगा उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी और वो फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, तो उनकी ये मजबूरी है इसलिए वो अमेरिकी मफाद का तहफ़ुज़ करते हैं और अमेरिकी एजेंडे पर अमल करते हैं। लेकिन तुर्की को क्या परेशानी है? तुर्की जो हाल ही में दहशतगर्दों के हामी मुल्कों में शामिल हुआ है, इराक में भी वो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है, फ्रांस में भी अमरीकी एजेंडे पर, उसमें शाम में भी अमरीकी एजेंडे पर अमल कर रहा है, इराक में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अदालत को मतलूब तारिक हाशमी इराक से भागते हैं और तुर्की उनको पना देता है। तुर्की इस ग्रोह में क्यों शामिल हुआ है, उसकी क्या मजबूरी है?
देखिए इस बात का तजिया करते हुए मुझे ये हैरत से सोचना पड़ रहा है कि मुस्लिम दुनिया के अक्सर लीडर्स जो है जो बज़ाहिर अवाम की नुमाइंदगी के दावेदार हैं और वो पार कॉरिडोर्स में अपने स्टेक्स रखते हैं, उनकी सोच व फिक्र के सब रास्ते अमेरिकन बालादस्ती की समझ जाते हैं और वो कल्बी तौर पे और फिक्री तौर पे अमेरिकन जो एक इन्फ्लुएंस है उसको तस्लीम कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि उनको याद करना चाहिए कि हमारे बाजदाद जो हैं उन्होंने हुरमत आदमी के लिए, ताबद रोशनी के लिए हर दौर में तारीख के सफ़ात पे कलमा हक कहा था और मकतलों, कैद खानों और सलीबों पे बहता लहू आज भी उनके होने का ऐलान करता है और वो खुदी और ज़मीर की रोशनी में वो नापसंदीदा सच की अदायगी करते रहे और वो जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहते रहे, चाहे वो आलमी जाबिर सुल्तान हो या मुकामी जाबिर सुल्तान हो या कोई कौमी जाबिर सुल्तान हो, उन्होंने कलमा हक की अदायगी में कभी कोताही नहीं बरती। तो मुस्लिम दुनिया के लीडर्स को आज उन्हीं किरदारों को मशल राह बनाना चाहिए जिन जो तारीख के माथे का झूमर हैं और जिन्होंने जो है हर दौर में आज़ाद इंसानों की और जो कुछ लीडर्स हैं मुस्तकबिल के उनकी रहनुमाई की है। तो ये जो गुलामाना अफकार हैं, गुलामाना सोच है, इसको पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक जो आज बालादस्त ताकतों के गुलाम बने हुए हैं उनको तर्क करना चाहिए और उनको बाहमी इताअत पे मबनी एक दुनिया के अमन के लिए एक नया खाका मुरतब करना चाहिए। चूँकि मैं इस बात पे कामिल यकीन रखता हूँ कि हुब्बुल वतनी अपने हम वतनों से जो है प्यार का नाम है, ना कि गैर मुल्की लोगों से नफरत का कोई दूसरा नाम हो। हुब्बुल वतनी मेरी नज़र में अपने हम वतनों से प्यार, उनकी और उनकी वेलफेयर और उनकी फलाह के लिए काम करने का नाम है, ना कि दूसरी कौमों को हीट करने का या उनसे नफरत का नाम है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्लिम दुनिया जो है दुनिया के क़ियाम अमन के लिए और अपनी जो मुस्लिम उम्मा की ज़रूरियात हैं उसकी रोशनी में एक मुश्तरका लायमल तय करने के लिए एक यकजा होकर एक लायमल तश्कील दे और दुनिया में ख़ास तौर पे जो वॉर ऑफ वर्ड्स है अब दुनिया के में जो जंगों के तौर तरीके अतवार बदल चुके हैं, हमें ये समझना होगा कि अब वो बंदूक का वक्त शायद नहीं रहा, अब हमें टेक्नोलॉजी के मैदान में और इल्म जो हमारा विरसा था उसके मैदान में हमें आगे आना होगा और दुनिया का टेक्नोलॉजी के मैदान में और जो आज सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न ताकतों का उसको हमें अपने लोगों को एजुकेट करके उसका मुकाबला करना चाहिए और जो गलबा है मगरबी मीडिया का उसको हम अपने मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं। जिस तरह सहर टीवी एक आवाज़ है, जानदार आवाज़ है, यानी इसी तरह मुस्लिम उम्मा को बैनुल अक्वामी सतह पर यूनिटी के लिए अपने टीवी चैनल्स लॉन्च करना होंगे, अब सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वेबसाइट्स का इजरा करना होगा। हमें आंसू बहाने से अब आगे निकलना है। अगर कोई फेसबुक पे गुस्ताखाना खाके इशू कर देता है तो हम आंसू बहाते रहते हैं, अपने बजट जला देते हैं, अपने ही बाजारों में जो है वो एक दहशत गर्दाना सोच को तरवीज देते हैं। उससे बेहतर ये है कि हम अपने अंदर जो मौजूद वसाइल हैं उनको एक नया रुख दे सकें और मुतबादल ज़राए जो है उसकी सिमत बढ़ सकें और मुस्तकबिल की क़यादत इस बात पे जोर देती है, इस बात की ज़रूरत को आज़ाद महसूस करती है कि हमें मुस्तकबिल में दुनिया के जो एक इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं, दुनिया के जो चौधरी हैं उनसे लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी को जो है इस्तेमाल करना होगा और अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी बर्बादी के चर्चे होंगे आसमानों पे भी और ज़मीनों पे भी। हम इसी तरह बाहमी इंतशार में आपस में एक दूसरे को मारते रहेंगे और दुनिया जो है वो तमाशबीन की तरह हमारा मजाक उड़ाती रहेगी। तो एक तो उम्मा की लेवल पे यूनिटी की ज़रूरत है, लीडरशिप के लेवल पे एक मुश्तरका लायमल की ज़रूरत है और साथ ही साथ दुनिया में जो नौजवान तबका है जो दुनिया के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है उसको मुस्लिम दुनिया के लोगों को समझना होगा कि इस्लाम एक सलामती का मजहब है, उसने कभी भी दहशतगर्दी को और दहशतगर्दाना सोच को जो है परवान नहीं चढ़ाया बल्कि इस्लाम सलामती का दूसरा नाम है और उसने हमेशा से जो है एक प्रोटेक्शन को और इन चीज़ों को और भाईचारे को फ़रोग दिया है और भाईचारे पर मबनी सोच जब इस्लाम की हकीकी स्पिरिट के तहत नाफिज होगी तो फिर उस दिन महमूद याज एक ही सफ में खड़े होंगे, शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पियेंगे और दुनिया जो है अमन
शुक्रिया।
से एक दूसरे के साथ जी सकेगी और अक़वामे आलम में मुस्लिम उम्मा का मुकाम जो है वो भी बालादस्त होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा बस हुसैन साहब से रब्ता बरकरार हो गया है। आगा बस हुसैन साहब
जी,
जनाब ये जो खत्ते की आमिर हुकूमतें हैं, क्योंकि इनकी आमरियत और इनकी हुकूमत का इन्हिसार अमरीका की खुशनूदी पर है, ये अमरीकी और सहूनी एजेंडे पर अगर काम कर रही हैं तो समझ में आती है बात। लेकिन तुर्की इस ग्रोह में क्यों शामिल हुआ है कि वो इराक में भी दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है, तारिक हाशिमी जो वहां से भागा मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अदालत को मतलूब है, वो तुर्की में आके उसने पनाह ली, तुर्की उसकी मेजबानी कर रहा है, शाम में भी वो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। तुर्की के इस रवैये के बारे में आपका तजिया क्या है? हमारे पास 3 मिनट का वक्त है।
देखिए मुझे मुझे मैं आपसे आधे मिनट में बात करूंगा। मेरे भाई जो दिल्ली में है वो एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने कुछ पाकिस्तान का हवाला दिया है, वो बहुत सवाल है। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता शिया सुन्नी की मस्जिदों में हमले नहीं कर रहे और ना ऐसा हो रहा है। ये फाटा के वो बहका हुए लोग हैं जो तालिबान के लोग हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से। बहरहाल ये मैंने तस्दीक कर दी। दूसरी बात ये कि देखिए तुर्की में जो सूरत हाल है, तुर्की का देखिए ताल्लुकात जो है वो इसराइल से है, और ये आज के नहीं बल्कि बहुत जमाने से इसराइल की और तुर्की के ताल्लुकात हैं। दूसरी बात ये कि जो इसराइल की नई क़यादत आई है उसका एक अजीब गरीब अंदाज है। एक तरफ तो वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश करती है और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए उसने इतने लाख जतन किए लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि शाम में जो आखिरी जंग हो रही है और जहां पर मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना खासा शाम के अंदर अगर तब्दीली साम्राज्य कुवतों के ऐन मुताबिक हो गई जैसे कि लीबिया में हुई है, तो मैं ये समझ रहा हूँ तो इस पूरे खत्ते में सऊनी जो ताकत है और उनके दोस्त हैं और उनके जो हलीफ हैं उनका राज हो जाएगा, जो जिससे मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। और यही वजह है कि बहुत से लोगों ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा टॉक शो हुआ था जिसमें बाकायदा ये कहा था कि तुर्की को अपने तो जो जो उसकी जो खारजा पॉलिसी है उसमें तब्दीली लानी चाहिए। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान के बड़े गहरे मरासिम है, यहाँ तक के तुर्की के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को अपना दूसरा मुल्क और दूसरा मतलब घर समझते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तुर्की के इस रवैये से उन ताकतों को हौसला मिल रहा है कि जो पहले ही इस्लामी दुनिया के अंदर तकसीम कर रहे हैं और दर तकसीम का बायस बन रहे हैं, और गैर शौरी तौर पर या शौरी तौर पर जो जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नवोलोजा बड़ा अच्छा हो, जो शौरी तौर पर या गैर शौरी तौर पर साम्राज्य कुवतों का साथ दे रहे हैं। हालांकि तुर्की इस वक्त ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं, उसने अपनी फौज को जो है वो काबू कर लिया है और फौज जो है कभी भी इस्तेदार पर कब्जा नहीं कर लेगी। हो सकता है कि उनका एक दाखिली मसला हो और हो सकता है कि वो किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो गए, लेकिन उनकी जो खारजा पॉलिसी है जिस तरीके से वो शाम में उन कुवतों की मदद कर रहे हैं, और फिर जो अफसोसनाक बाकी है कि उनका रवैया इराक के सिलसिले में भी तकरीबन वही है कि जो उनका शाम में है। तो मैं मेरी अपनी जाति राय है कि बहसियत एक दोस्त मुल्क के अफगान को साहब को ये चाहिए कि वो अपनी इस पॉलिसी पे रिव्यू करें, और वो जितनी भी कोशिश कर लेंगे यूरोप उनको तस्लीम नहीं करेगा, चाहे वो शाम के खिलाफ कितनी ही मतलब ये कि अपनी मॉरल और फिजिकल और आम फोर्सेस के जरिए वो करें, वो उनको वो उसी उस पर रखेगा। तो ये तो गलतफहमी ये है, और दूसरा उनकी ये सोच भी बहुत गलत है कि उनकी ताकत से या उनकी कुव्वत से या उनके इश्तराक से शाम में कोई तब्दीली आ सकेगी। शाम की तब्दीली शाम के अवाम लेकर आएंगे, वो सूरत क्या बनती है अभी तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साम्राज्य कुव्वत अगर यहाँ पर कामयाब हो गई, और माफ कीजिए बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि साम्राज्य कुव्वतों को जो असली ताकत और हौसला मिल रहा है इस मशरक वस्ता में, वो मुसलमान ममालिक फराहम कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि ये खुद घर को आग लग गई, घर के चिराग से ये हमारे लिए जो है सवाल रू बनेंगे, और ये सोचना कि इनके माबेन कभी इत्याद होगा वो तो फिर मैं समझता हूँ इमाम जमाना आके वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे कोई इत्याद की सूरत हाल नजर नहीं आ रही।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बस हुसैन साहब और हन्नान अली अब्बास साहब और अफजल मिसबाई, तीनों हजरात के हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन तीनों तजिया निगारों के ख्यालात मुलाहिज़ा फरमाए। बहरहाल किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी ये किसी मुसलमान का एजेंडा नहीं हो सकता, यकीनन ये सहूनी और साम्राज्य एजेंडा है जिस पर दानिश्ता या ना दानिश्ता तौर पर मुसलमान अमल करते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।